डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशाया 17:5-7-8 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशाया की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 5 यशाया अध्याय 7 और 8 है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हम यहाँ हमारे साथ आपकी उपस्थिति से प्रसन्न हैं। विशेष रूप से आपके वचनों को हमारे हृदयों तक पहुँचाने के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। कृपया अपने शब्दों के लिए हमारे दिल खोलें और हमें एक साथ सोचने में सक्षम बनाएं, ताकि हम आपके चरित्र और स्वभाव में पूरी तरह से आकार ले सकें। हम इसीलिए बने हैं, हम जानते हैं। हम इसी की अभिलाषा करते हैं कि हम सचमुच आज यहाँ मसीह बने। उसके हाथ, उसके पैर, उसका शरीर खोई हुई दुनिया की खातिर हमारी मदद करो प्रभु, और हम तुम्हें धन्यवाद देंगे। आपके नाम पर आमीन। खैर, एक हफ्ते के ब्रेक के बाद आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। हमने रोमानिया और हंगरी की अच्छी यात्रा की और फिर भी दुनिया के इस हिस्से में वापस आकर खुश हैं। हम कल रात लगभग 11:30 बजे लेक्सिंगटन वापस आए, इसलिए मेरे शरीर के अनुसार अभी सुबह के 2 बजे हैं। इसलिए अगर मैं सो जाऊं तो कृपया मुझे मत जगाना। मुझे शेड्यूल में बदलाव की घोषणा करनी है। यदि आपके पास कार्यक्रम है तो हम 29 अक्टूबर को नहीं मिलेंगे, इसलिए हम अगले सप्ताह के अंत में मिलेंगे, फिर एक ब्रेक। हम 29 अक्टूबर को नहीं मिलेंगे, हम 5 नवंबर को मिलेंगे। तो बस उन दोनों को उलटकर हम 5 नवंबर को अध्याय 13 और 14 का अध्ययन करेंगे। तो 29 तारीख को कोई पढ़ाई नहीं, लेकिन 5 तारीख को पढ़ाई होगी। हमने अब पुस्तक के परिचय पर ध्यान दिया है और हम उसके पहले भाग पर आते हैं, जिसे मैं अगला मुख्य खंड समझता हूँ, जो वास्तव में 7:1-39 तक फैला हुआ है। क्षमा करें, 35:16 तक मेरा मानना है कि यह है। चलो देखते हैं। 35:10 सेवकाई के आधार पर भरोसा रखें। यदि राष्ट्र को दुनिया की खातिर भगवान का सेवक बनना है तो उन्हें उसे अच्छी तरह से जानना होगा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। कोई भी उस व्यक्ति का नौकर नहीं बनेगा जिस पर हमें भरोसा नहीं है। यह भी अध्याय 6 के मॉडल का अनुसरण करते हुए, यह ईश्वर का रहस्योद्घाटन है, स्वयं का रहस्योद्घाटन है। तो यह खंड अध्याय 6 के उन हिस्सों से मेल खाता है। हम 7:1-12:6 तक बिना किसी भरोसे के शुरू करते हैं। राजा आहाज को परमेश्वर पर भरोसा करने और उसका उद्धार देखने का अवसर दिया जाता है और आहाज कहता है, नहीं धन्यवाद। जैसा कि पृष्ठभूमि में आपके लिए स्थिति बताई गई है, यह लगभग 700 है। ठीक है, क्षमा करें, आइए पूरे अनुभाग के लेआउट को देखें और फिर हम वापस जाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। इसमें 3 उपविभाग हैं। यदि हम इसे मुख्य भाग 2 का कहें तो इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3 है। अध्याय 7:1-9:7 बच्चों प्रतिज्ञा के लक्षण, यही वह है जिसे हम आज रात देखने जा रहे हैं और इसे फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। इम्मानुएल की निशानी अध्याय 7 माहिर शलाल हशबास की धमकी, हम अब अपने बच्चों का नाम उसके लिए ज्यादा नहीं रखते, और बच्चे का वादा। इस पूरे उपविभाग में बच्चे प्रमुख हैं। अश्शूर का खतरा बच्चों के वादे से पूरा किया जाता है, और हम आज रात और अगले सप्ताह दोनों समय इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। इम्मानुएल की निशानी माहिर शलाल हशबास की धमकी बच्चे का वादा। फिर एक दिलचस्प अंतराल 9.8 से 10.4 तक और फिर 10.5 से 12.6 तक बहुत सावधानी से संरचित कविता बच्चे का साम्राज्य। तो आहाज का भरोसा करने से इनकार उस निर्णय के निहितार्थ के माध्यम से किया जाता है। यदि आप ईश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे तो उससे कुछ निश्चित परिणाम मिलेंगे, लेकिन यशाया पूरी बात को उसके अंत तक ले जाता है, जहां अध्याय 12 में हमारे पास ईश्वर की अंतिम मुक्ति के कारण स्तुति का एक भजन है। ठीक है, उस बड़ी रूपरेखा पर कोई प्रश्न? ठीक है, आइए फिर प्रतिज्ञा के संकेतों को देखें। तारीख लगभग 735 है। असीरिया मिस्र की ओर अपने आखिरी बड़े प्रयास पर है, जो अंततः उसे वहां ले जाएगा। जैसे जैसे अश्शूर की सेनाएं वापस आ रही हैं, इसराइल का उत्तरी साम्राज्य साल दर साल लगातार कमजोर होता जा रहा है, और फिर वे इसराइल इसे रोकने का एक रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसलिए इसराइल और सीरिया ने फैसला किया कि वे एक गठबंधन बनाएंगे। 100 साल पहले इन छोटे देशों का गठबंधन कम से कम कुछ समय के लिए अश्शूरियों को रोकने में सफल रहा था, और इसलिए ऐसा लगता है मानो वे कह रहे हों, अच्छा यह हमारे परदादाओं के लिए काम करता था, आइए इसे फिर से आजमाएं। इसलिए उन्होंने यहूदा से कहा, ठीक है, तुम्हें हमारे साथ जुड़ना होगा, आपको इस गठबंधन में हमारे साथ शामिल होना होगा। खैर, यह थोड़ा सा सवाल है, यदि आप सफल हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप सफल नहीं होते हैं तो असीरियन आतंक के स्वामी हैं, और उनके पास उन लोगों के साथ वास्तव में बहुत बुरी चीजें करने का एक तरीका है जो उनका विरोध करते हैं। इसलिए यहूदा के राजा आहाज को निर्णय लेना होगा। अब यह सोचने का कुछ कारण है कि यहूदी सरकार में असीरियन और असीरियन विरोधी गुट थे, और वह आहाज असीरियन समर्थक गुट की जेब में था। हम यह निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन कुछ संकेत हैं। इसलिए हो सकता है कि उनका झुकाव इस गठबंधन विचार के खिलाफ रहा हो, या हो सकता है कि उसने बस यह निष्कर्ष निकाला हो, नहीं देखो, हमारे पास कोई मौका नहीं है, हम तीनों के पास असीरिया के खिलाफ कोई वास्तविक मौका नहीं है, और इसलिए उन्होंने गठबंधन में भाग नहीं लेने का फैसला किया। तो इसराइल और सीरिया ने फैसला किया, आप हमारे गठबंधन में शामिल होंगे, और यदि तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें सिंहासन से उतार देंगे आहाज, और हम अपने ही आदमी को गद्दी पर बिठाएंगे। अब इस आदमी का नाम ताबेल था, और हम उसके बारे में और कुछ नहीं जानते। इसका मतलब कुछ कुछ ईश्वर की भलाई जैसा है, यही उसका नाम है। वह डेविड वंश से था या नहीं हम नहीं जानते। तथ्य यह है कि इसका उल्लेख नहीं किया गया है, यह बताता है कि संभवतः उसका उल्लेख नहीं किया गया था। तो फिर न केवल यहूदा संकट में है, बल्कि ये दोनों राष्ट्र उन पर हमला करने जा रहे हैं। परंतु दाऊद का घराना भी संकट में है, और आहाज को इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो आहाज को क्या करना है? हमें राजाओं की पुस्तकों में बताया गया है कि आहाज ने भारी मात्रा में धन एकत्र किया और उसे अश्शूर को भेज दिया। प्रिय श्री असीरिया, क्या आप कृपया मेरे पैसे का उपयोग करेंगे और इन दोनों देशों पर हमला करेंगे? मैंने पिछले कुछ वर्षों में कई बार कहा है कि मुझे आशा है कि स्वर्ग में तत्काल पुरावृत्ति होगी। मैं तिगलत पिलेसेर के चेहरे पर वह भाव देखना चाहता हूँ जब दूत इतनी बड़ी धनराशि लेकर आता है और कहता है, श्रीमान, यहूदा का आहाज आपको इसराइल और सीरिया पर आक्रमण करने के लिए भुगतान करना चाहता है। वह क्या करना चाहता है? वह करता है, चेक भुनाओ, जल्दी करो, उसके होश में आने से पहले चेक भुनाओ और उस पर रोक लगाओ। यह ऐसा है जैसे तीन चूहों में लड़ाई हो रही हो और उनमें से एक ने बिल्ली को किराए पर ले लिया हो। और यहीं से अध्याय सात में हमारी कहानी शुरू होती है। आहाज बाहर है, स्पष्ट रूप से जल व्यवस्था की ओर देख रहा है। पद तीन, तू और तेरा पुत्र शियार यशुव धोबी के खेत की सड़क पर ऊपरी पोखरे की नाली के सिरे पर आहाज से मिलने को निकल। यहीं पर यशायाह उससे मिलता है। वह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्थान पर यशायाह ने आहाज को परमेश्वर पर भरोसा रखने की चुनौती दी और आहाज कहता है नहीं। कृपया अध्याय 36 की ओर मुड़े। 34 साल बाद देखें कि असीरियन दूत यहूदा के सभी अन्य मजबूत शहर अब कहां ले लिए गए हैं और यरूशलेम अकेला खड़ा है। और दूत सेना का तीसरा प्रभारी अधिकारी, तीसरा कमान अधिकारी आत्मसमर्पण की मांग करने के लिए यरूशलेम भेजा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि वह आत्मसमर्पण का आह्वान करने के लिए कहां खड़ा है। श्लोक 36, श्लोक 2, वही स्थान। 34 साल बाद वही स्थान। आपके पास एक मौका था आहाज, और आपने उसे गवा दिया। यही कारण है कि मैं कुछ अन्य लोगों के सामने यह तर्क दूंगा कि 7 से 39 एक इकाई है। हमें 7 से 12 पर कोई भरोसा नहीं है और फिर हमें 36 से 39 में दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता है और हिजकियाह उसमें उत्तीर्ण हो जाता है। नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। हाँ, मैं करूंगा। बीच में अध्याय 13 से 35 विश्वास के पाठ हैं, जहां ईश्वर यहूदा को देता है, यह थोड़ा थोड़ा क्रमादेशित शिक्षण जैसा है, याद है। आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं। ठीक है, पृष्ठ एक्स पर वापस जाएं और फिर से शुरू करें, और 13 से 35 में हमारे पास इन पाठों पर भरोसा है, और फिर आहाज का पुत्र हिजकियाह फिर से परीक्षा देने के लिए तैयार है और वह उत्तीर्ण हो जाता है। तथ्य यह है कि हमने इसी परिच्छेद को 7 और 36 में दोहराया है। यह मुझे इस बात से आश्वस्त करता है कि इसे कैसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब भगवान कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अपने बेटे को अपने साथ ले जाओ। यहां बच्चों में से पहला है और हम इसके माध्यम से जाने वाले हैं। हमारे पास एक छोटा बच्चा है जो अध्याय 11 में उनका नेतृत्व करेगा। बच्चों यहां से पूरे रास्ते दौड़ने जा रहे हैं और हमें इसके महत्व के बारे में सोचने की जरूरत है उसका। अब भगवान कहते हैं, यशायाह, मैं चाहता हूं कि तुम बाहर जाओ और आहाज से मिलो, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने बेटे को अपने साथ ले जाओ। आपका पुत्र, जिसका नाम रखा गया है, केवल एक अवशेष ही लौटेगा। अब भगवान ने ऐसा क्यों किया? यशायाह उसे विश्वास करने के लिए चुनौती देने के लिए वहां जा रहा है। तो क्या परिणाम पहले से ही निर्धारित है? क्या आहाज के पास सचमुच कोई विकल्प नहीं है? इस लड़के को भेजने का क्या मतलब है? आप जानते हैं, हेलो राजा आहाज, के हेलो यशायाह, आपके साथ कौन मिला? केवल अवशेष ही वापस आएगा। अब इसका क्या मतलब है? एक वस्तु पाठ, इसकी भविष्यवाणी लोगों को की जा रही है। ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आहाज के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है? वह अवशेष का हिस्सा हो सकता है। इसे ठीक पहली बार लें। यदि तुम यहोवा की आज्ञा मानोगे तो एक अवशेष रह जाएगा। यदि आप नहीं करते हैं तो एक अवशेष बना रहेगा, लेकिन बाकी बचे रहेंगे। ठीक है, दो तरफा बात। हर हाल में अवशेष रहेगा। यह बचे हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। यह उनमें से बाकी लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, इस पर कोई अन्य विचार? यह बाइबल में ईश्वरीय पूर्वज्ञान और मानवीय स्वतंत्रता के बीच सबसे बड़े तनावों में से एक है। इन्हें हल करने के लिए सदियों से कई प्रयास किए गए हैं। सबसे हालिया को खुला आस्तिकता कहा जाता है, जिसमें यह तर्क दिया जाता है कि ईश्वर जानबूझकर भविष्य नहीं जानता है ताकि हम स्वतंत्र इच्छा रख सकें। इस पर मेरी प्रतिक्रिया यह है कि यदि बाइबल इसका समर्थन करती है तो यह बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है। यह केवल तथ्य है कि बाइबल हम दोनों को सिखाती है। ईश्वर भविष्य को जानता है, लेकिन किसी न किसी तरह वह ज्ञान हमारे विकल्पों की वास्तविकता को रोकता नहीं है। अब हमारा दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि उन दोनों को एक साथ रख सके और हम किसी न किसी खाई में गिरते रहते हैं। ओह, यह सब पूर्व निर्धारित है, दोहरा पूर्व नियति है। जो लोग अभिशप्त हैं वे उनके जन्म से पहले ही अभिशप्त हैं, या इस तरह की अन्य चीजें। खैर, भगवान वास्तव में नहीं जानता कि क्या हो रहा है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। नहीं, किसी तरह दोनों को तनाव में रखना होगा। तो यहाँ अध्याय 7 के पद 2 और पद 6 को देखें। हमें बताया गया है कि दाऊद का घराना बहुत भयभीत था। जब दाऊद के घराने का समाचार सुना गया, तब उसके लोगों का हृदय जंगल के वृक्षों की नाई कांप उठा। और फिर श्लोक 7 में, क्षमा करें, यह श्लोक 6 है। आहाज वास्तव में किससे डरता था, क्या आपको लगता है? क्या उन्हें अपने देश के नष्ट हो जाने का डर था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आहाज के बारे में हम जो जानते हैं, उससे पता चलता है कि वह अपने देश के बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं था। वह अपने बारे में बहुत चिंतित था। और यह दिलचस्प है कि यदि आप श्लोक 13 को देखें, तो यशायाह ने कहा कि दाऊद के घराने यहाँ। हम इस बारे में अगले सप्ताह फिर से बात करेंगे, लेकिन बाइबल हमेशा बहुत ही सूक्ष्म होती है। एक ओर दाऊद के घराने के लिए वादे हैं, लेकिन साथ ही आपके पास न्याय के शब्द भी हैं जो दाऊद के घराने पर पारित किए गए हैं। तो तथ्य यह है कि भगवान ने कुछ वादे किए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका घर मुफ्त हो गया है। अब इस तरह की बात भगवान के लिए एक समस्या बनती है ना? मेरा मतलब है, उसने वादा किया है कि डेविड के सिंहासन पर हमेशा के लिए कोई रहेगा। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह दाऊद के सिंहासन को उखाड़ फेंकने की अनुमति नहीं दे सकता? आप क्या सोचते हैं? अनुबंध के दो पक्ष होते हैं, और 2 शमूएल 7 में वह पहला वादा सशर्त है। फिर यह बहुत दिलचस्प है। यदि तुम्हारा पुत्र विश्वासयोग्य है, तो तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठने के लिए एक पुत्र की कमी नहीं होगी। यहाँ फिर यह तनाव ईश्वर के वादे और पालन करने की हमारी अपनी जिम्मेदारी के बीच है। और निश्चित रूप से 586 में एक दिन ऐसा आया जब डेविडिक राजशाही का अंत हो गया, एक विनाशकारी अंत। और इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग कह रहे हैं, ठीक है, भगवान ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। बेशक भगवान ने एक रास्ता ढूंढ लिया है ना? यीशु किस परिवार का हिस्सा है? डेविड की पंक्ति तो यहाँ फिर से, मुझे ऐसा लगता है, ईश्वर की रचनात्मकता का एक अद्भुत उदाहरण है। वह अपने वादे निभाने जा रहा है, लेकिन इससे हम जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते। इस बिंदु पर लोगों ने कहा कि भगवान के वादे विफल हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम दाऊद के पुत्र को सिंहासन पर बिठाने जा रहे हैं। हमारे पास सिंहासन पर दाऊद का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए परमेश्वर विफल हो गया है। और भगवान ने कहा, रुको, मैं अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन इससे आप वफादार रहने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते। यहाँ फिर यह तनाव है जिसे हमें लगातार ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, क्या यह इस बात का भी उदाहरण है कि हम क्या करते हैं, इसे सचमुच दिन ब दिन लेते हुए नहीं? हाँ हाँ हाँ, और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम परमेश्वर के वादों के बारे में सोचते हैं। हर तरह से परमेश्वर के वादों का अध्ययन करें, परमेश्वर के वादों के आधार पर जियो, लेकिन यह विश्वास न करें कि वे किसी भी तरह से मजबूत हैं, चाहे हम कोई भी हों। भगवान अपने वादे निभाने जा रहे हैं, लेकिन दीर्घ दृष्टि में। अच्छा, हाँ ठीक है। पद चार, यशाया, मैं चाहता हूं कि आप उससे यही कहें, ध्यान से चुप रहें, डरना मत। सीरिया और रमेलिया के पुत्र में तर्क के भयंकर क्रोध पर आग के इन दो सुलगते ठूंठों के कारण अपने हृदय को निराश न होने दें। अंग्रेजी में फिर से इस चित्र को स्पष्ट कर पाना कठिन है, लेकिन यहाँ चित्र आग के किनारे लकड़ी का है। मेरे चित्र बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आग बुझ गई है और क्या बचा है। यहाँ ये छोटे छोटे टुकड़े सुलगते हुए दिख रहे हैं। ये लोग ऐसे ही हैं, वे बस बचे हुए हैं। भगवान कहते हैं उनके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब क्या यह हमारी अभिव्यक्ति की तरह नहीं है, सारा धुआं और कोई आग नहीं? हाँ हाँ हाँ, वहां चार अनिवार्यताएं। पाप का आधार क्या है? उस श्लोक के अनुसार कई कई मामलों में पाप का कारण क्या है? चिंता, कष्ट, भय, चिंता, यहीं से पहला पाप आया। आदम और हव्वा ने सांप की बदनामी सुनी। भगवान को आपकी परवाह नहीं है, भगवान को आपकी जरूरतें पूरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह सिर्फ अपना खेल खेल रहा है। तुम उसकी शतरंज की बिसात पर मोहरे हो। ओह आदमी, हमें अपनी जरूरतें स्वयं पूरी करनी होंगी। और पहला पाप रचा गया। बार बार पाप का कारण भय है, और भय विश्वास के विपरीत है। सांप ने भगवान की विश्वसनीयता पर हमला किया। तो यहीं से हम यहां शुरुआत करते हैं। क्या भगवान पर भरोसा किया जा सकता है? और इन अध्यायों के माध्यम से अध्याय 39 तक हम उस प्रश्न से जूझते रहेंगे, क्या ईश्वर भरोसेमंद है? सबसे निचली पंक्ति में, मैंने इसे यहाँ पहले भी कहा है, लेकिन यह इस देश में रहने के दुर्भाग्य में से एक है। हमें दिन ब दिन भगवान पर भरोसा नहीं करना है। प्रभु की प्रार्थना करना एक उपहास है। हमें इस दिन हमारी रोज की रोटी दें। मैं हाथ दिखाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं कि इस कमरे में हर किसी को कल खाना मिलेगा। इसलिए हमें दिन ब दिन उस पर भरोसा नहीं करना है, और यही हमारा दुर्भाग्य है। दुनिया के अन्य हिस्सों में हमारे कुछ भाई बहन जो दिन ब दिन उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर होते हैं, उन पर भरोसा करने में हम में से कुछ की तुलना में बेहतर हैं जब संकट का समय होता है। सावधान रहें, शांत रहें, डरे नहीं, अपने दिल को कमजोर न होने दें। यह विषय इस पूरे खंड में सही ढंग से चलने वाला है। इसलिए जब वह आए तो अपनी आंखें खुली रखें। ठीक है, तो मैंने आपको पृष्ठभूमि में कुछ आंकड़े दिए हैं कि ये भविष्यवाणियां किस तरह से पूरी होती हैं। तो वह कहता है 65 वर्ष के भीतर एप्रैम टुकड़ों में टूट जाएगा। और फिर याद रखें कि एप्रैम उत्तरी साम्राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो एप्रैम उत्तरी साम्राज्य इज़राइल के बराबर है। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से एक चिन्ह मांग, वह अधोलोक के समान गहरा या स्वर्ग के समान ऊंचा हो। यह कितना बड़ा संकेत माना जा रहा है? जितना बड़ा आप कल्पना कर सकते हैं, नर्क जितना गहरा या स्वर्ग जितना ऊंचा, उस प्रकार का चिन्ह मांगे। वाह, हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, चलो उस पर कायम रहें। और आहाज ने कहा, मैं न पूछूंगा, मैं यहोवा की परीक्षा न करूंगा। खैर, अब मैंने जो इतिहास आपको बताया है उससे पता चलता है कि वह कोई संकेत क्यों नहीं मांगना चाहता था। उसने पहले ही अपनी व्यवस्था कर ली थी। वह पहले ही कई करोड़ खर्च कर चुका था। और यह बहुत असुविधाजनक होगा अगर उसे पता चले कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वह यह जानना नहीं चाहता था। झूठी धर्मप्रायणता की भावना, आप जानते हैं। हाँ, और वह अपनी अवज्ञा को उस झूठी धर्मप्रायणता से ढक देता है। क्या आपके पास इस पर कुछ और विचार हैं? धर्मप्रायणता कभी कभी अविश्वास के आवरण के रूप में कैसे कार्य करती है? यह एक बाहरी प्रभाव देता है। मैं इसके साथ हूँ, मैं भगवान के साथ हूँ। बिल्कुल, इससे यह बाहरी आभास होता है कि ओह हाँ, मुझे इन कच्चे संकेतों की आवश्यकता नहीं है, मैं उससे कहीं अधिक दूर हूँ। लेकिन वास्तव में यह हमारे द्वारा स्वयं को उस स्थिति में डालने से इनकार करने का एक आवरण मात्र है जहाँ हमें ईश्वर पर भरोसा करना होता है। और फिर इस देश में अपने जीवन को व्यवस्थित करना बहुत आसान है ताकि हम कभी भी उस जोखिम भरी स्थिति में न पहुंचे जहां अगर भगवान हमें असफल कर दे तो हम गड़बड़ में पड़ जाएंगे। भगवान आए, आहाज को इसके बारे में कुछ करना होगा। हाँ हाँ, ऐसे प्रश्न न पूछें जिनके उत्तर आप नहीं चाहते। हाँ हाँ, तो पवित्रता की ये सूचनाएं वास्तव में जोखिम से बचने का एक तरीका हो सकती हैं, खुद को ऐसी स्थिति में डालने से बचना जहां भगवान को आना है। मैंने वर्षों से मदरसा के छात्रों को देखा है जो कक्षा से लगभग दो दिन पहले आते हैं, उनके सभी सांसारिक सामान एक पुराने पिकअप वाहन के पीछे होते हैं। हम कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि आप कहां रहने वाले हैं? नहीं, क्या आपकी पत्नी के पास नौकरी है? नहीं, लेकिन वह एक लेने जा रही है। क्या आपने अभी तक पंजीकरण कराया है? नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं। और आप अपना सिर हिलाते हैं, लेकिन भगवान ने हमें बुलाया। और आप उसे लगभग तीन या चार वर्षों तक देखते रहेंगे, हमेशा पूर्ण आपदा के कगार पर रहते हुए। और फिर भी परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाता है। और अंत में वे ईश्वर के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जिसे हम में से कुछ लोग जो बहुत अधिक सावधान थे उन्हें सीखने का अवसर नहीं मिला। अब यह मूर्खता का कारण नहीं है। और फिर भी मैं कहता हूँ, हमारी झूठी धर्मप्रायणता कभी कभी भगवान के लिए जोखिम लेने की हमारी अनिच्छा को छिपाने का एक साधन मात्र हो सकती है। और ठीक यही वह जगह है जहां आहाज था। ठीक है, आप जानते हैं, आप भगवान की आंखों पर से पर्दा नहीं हटा सकते। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, क्या मनुष्यों को थका देना तुम्हारे लिए छोटी बात है कि अब तुम परमेश्वर को भी थका देते हो? तुमने अपने लोगों को थका दिया है और अब तुम परमेश्वर को थका रहे हो। इसलिए भगवान आपको एक संकेत दे देंगे। अब इस निशान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। मुझे याद है कि मेरे दादाजी, जो एक सामान्य उपदेशक थे, जब संशोधित मानक संस्करण पहली बार सामने आया तो वह इसे जलाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन बदल दिया। एक जवान औरत गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी। नहीं, यह एक कुंवारी गर्भ धारण करेगी। खैर, हाँ और नहीं, यशायाह ने कुछ अजीब किया है। अब याद रखें, उन्होंने कहा है, एक संकेत स्वर्ग जितना ऊंचा या नर्क जितना गहरा। वह कहता है, ठीक है, मुझे वापस जाने दो और इसे इस तरह से कहने दो। हिब्रू में युवा महिला के लिए एक शब्द है नारा। हिब्रू में एक शब्द है जिसका अर्थ है पूरी तरह से कुंवारी, बेतुला। यशायाह ने इनमें से किसी भी शब्द सामान्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि वह एक अजीब प्रयोग करता है। शब्द अल्मा है। जैसा मैंने कहा, इसका मतलब है जवान औरत, इसका मतलब है कुंवारी, इसका मतलब विवाह योग्य उम्र की एक युवा महिला है। खैर, हिब्रू में यदि वह अविवाहित है तो वह या तो कुंवारी है या वेश्या है, वे विकल्प हैं। तो विवाह योग्य उम्र की एक युवा महिला जो संभवतः कुंवारी है। जैसा कि मैंने नोट्स में कहा है, सबसे अच्छा अंग्रेजी समकक्ष पुरातन युवती है। एक युवती गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी। अब युवती का मतलब वर्जिन नहीं बल्कि कौमार्य माना जाता है। तो सवाल यह है कि अगर यशायाह का मतलब युवा महिला था तो उसने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और अगर उसका मतलब वर्जिन था तो उसने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और मेरा मानना है कि इसका उत्तर इसलिए है क्योंकि इस चिन्ह का दोहरा महत्व है। उस समय के लिए इसका एक महत्व था। और यहां मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में श्लोक 17.16 और 17 को देखें। इससे पहले कि लड़का यह सीखे कि बुराई को त्याग कर अच्छाई को कैसे चुनना है, वह देश जिसके दो राजाओं से तुम डरते हो वीरान हो जाएगा। यहोवा तुम पर, तुम्हारी प्रजा पर और तुम्हारे पिता के घराने पर ऐसे दिन लाएगा जैसे उस दिन से नहीं आए जब एप्रैम ने अश्शूर के राजा यहूदा को छोड़ दिया। तो यदि आज एक बच्चा गर्भ धारण करता है 735 इससे पहले कि वह बच्चा बुराई को त्यागना और अच्छाई को चुनना सीखे, वह भूमि जिसके दो राजाओं से तुम डरते हो उजाड़ हो जाएगी। जैसा कि मैंने नोट्स में बताया है, जवाबदेही, नैतिक जवाबदेही बुराई को नकारने और अच्छाई को चुनने की उम्र 12 वर्ष है। माना जाता है कि 13 साल का बच्चा ऐसा करने में सक्षम है। वह बार मिट्जवा है, तभी एक लड़का मर्द बनता है। और अब यहूदियों के पास लड़कियों के लिए बैटमिट्जवा भी है, तभी एक लड़की औरत बन जाती है। जब मैं इस गर्मी में अपनी 50वीं सालगिरह पर फिर से हमारी शादी की तस्वीरें देख रहा था और मैंने सोचा, हमारे माता पिता ने उन दो बच्चों की शादी कैसे होने दी। बेशक हमने सोचा कि हम पूरी तरह से परिपक्व हैं, लेकिन मुझे लगता है महान स्कॉट 13 साल का आदमी, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि वहां क्या कहा जा रहा है। यदि आज एक बच्चा गर्भ धारण कर ले तो 13 वर्ष के भीतर वे दो भूमियां जिनसे तुम इतना भयभीत हो वीरान हो जाएंगी। 732 में दमिश्क को अश्शूरियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और 722 में सामरिया, जो इसराइल का आखिरी ठिकाना था, नष्ट कर दिया गया था। तो ऐसा लगता है जैसे यशायाह कह रहा है, मैं तुम्हें अभी एक संकेत देता हूं। आज एक बच्चे का जन्म हुआ है, इससे पहले कि वह बच्चा 13 वर्ष का हो जाए। ये दोनों भूमियां जिनसे आप इतना भयभीत हैं कि अपनी आत्मा को अश्शूरियों को बेच रहे हैं, से मुक्ति पाने के लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। इम्मानुएल, हमारे साथ भगवान। लेकिन यह चिन्ह स्वर्ग जितना ऊंचा या नरक जितना गहरा है। यह इतना ऊंचा या इतना गहरा कैसे हो सकता है? इसके अलावा सवाल यह है कि ईश्वर न केवल प्रतीकात्मक रूप से हमारे साथ है, बल्कि क्या वह वास्तव में हमारे साथ है? क्या वह सचमुच हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और वह सब कुछ साझा करेगा जो हम जानते हैं? और उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। एक कुवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तुम उसका नाम इम्मानुएल रखोगे। और यह दिलचस्प है कि 200 ईसा पूर्व और 125 ईसा पूर्व के बीच किए गए पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद में ग्रीक शब्द का उपयोग किया गया है जिसका अर्थ है कुंवारी। तो वे समझते हैं, हम अभी भी इस भविष्यवाणी की अंतिम पूर्ति की तलाश में हैं। और इसकी अंतिम पूर्ति के लिए इसे कुंवारी जन्म लेना होगा। तो मुझे लगता है कि यही चल रहा है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि यशायाह ने यह अस्पष्ट शब्द चुना है। अब मैं इसके बारे में केवल एक मिनट में और अधिक बताऊंगा जब हम अध्याय 8 पर पहुंचेंगे। लेकिन हमें यहां जल्दी करना होगा। तो यशायाह फिर श्लोक 17 से 25 में कहता है, क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करने से इनकार करते हो, अश्शूर आ रहा है। और पद 20, उस समय यहोवा महानद के उस पार के भाड़े के छुरे से अश्शूर के राजा का सिर और पाँव के बाल मुंडेगा और दाढ़ी भी उड़ा डालेगा। और वह उस स्थिति का वर्णन करता है जहां भूमि मूल रूप से बंजर हो गई है। इसलिए दूध को रखने के लिए आपको उसे फाड़ना होगा। इसमें बहुत कुछ है। और तुम शहद खा रहे हो और वे राजा का भोजन है। लेकिन जो भी बचा है वह उसे खाएगा, क्योंकि उसे खाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं होंगे। वह दिन आ रहा है। मुझे आपको बताना है, श्लोक 20 पाठ आलोचना का एक अद्भुत उदाहरण है। एक हिब्रू शब्द है शहर और दूसरा है शहर। शहर का अर्थ है किराए पर लेना। शहर का अर्थ है नशे में होना। तो श्लोक 20 ग्रीक में कहता है, उस दिन प्रभु नदी के पार से नशे में धुत उस तरह से दाढ़ी बनाएंगे। लड़के, यह डरावना है। लेकिन यह एस अक्षरों को मिलाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किराए के रेजर की जगह यह नशे में धुत रेजर है। लेकिन यह वहां है। इमैनुएल एक दोधारी उस्तरा है। यदि आप उसके साथ हैं तो यह अच्छी खबर है। लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं हैं, तो उसकी मौजूदगी बहुत बुरी खबर है। और यशायाह आहाज से कहता है, हे भाई, चाहे तू चाहे या न चाहे, परमेश्वर हमारे साथ है। और क्योंकि आपने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और अपने सबसे बड़े दुश्मन पर भरोसा करने से पहले उस पर भरोसा कर लिया है, अश्शूर आ रहा है। वे आपके शत्रुओं को नष्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वे आपकी सीमा पर रुकने वाले नहीं हैं। वे सीधे नाक तक आते रहेंगे। और ठीक वैसा ही 34 साल बाद पूरा हुआ, जब असीरियन द्वार पर थे और असीरियन अधिकारी अहंकार पूर्वक उनसे आत्मसमर्पण करने की मांग कर रहे थे। मैं इसे इस तरह से कहना पसंद करता हूं। आप ईश्वर के स्थान पर जिस पर भी भरोसा करते हैं वह एक दिन आप पर ही हावी हो जाएगा और आपको नष्ट कर देगा। मानव प्रेम, मानवीय उपलब्धि, ठीक है, आप सूची भर सकते हैं। जिस चीज पर आप भगवान के स्थान पर भरोसा करते हैं वह एक दिन आप पर हावी हो जाएगी और आपको नष्ट कर देगी। इसके बाद अध्याय 8 में इसे जारी रखा जाता है। हमारे पास तर्क वितर्क करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मेरा मानना है कि यशायाह के बेटे माहिर शलाल हशबास वास्तव में इस भविष्यवाणी की अल्पकालिक पूर्ति हैं। और यह बहुत अच्छा हो सकता है। 714 कहता है, युवती गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। मुझे लगता है कि यह असंभव नहीं है कि यशायाह ने अपनी मंगेतर की ओर इशारा किया, क्योंकि अध्याय 8 कहता है, मैं भविष्यवक्ता के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महेर शलाल हशबज रखना। लूट की गति तेज होती है, शिकार की गति तेज होती है। भगवान हमारे साथ है। भगवान हमारे साथ है। अध्याय 8 के श्लोक 11 में प्रभु ने मुझ पर बलशाली हाथ रखकर इस प्रकार बात की और मुझे चेतावनी दी कि मैं इन लोगों के मार्ग पर न चलूं। और इन लोगों का तरीका क्या है? जिसे ये लोग साजिश कहते हैं उसे साजिश मत कहिए, और जिस बात से वे डरते हैं उससे मत डरो और न डरो। जनता इस स्थिति को देख रही है। वे कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, असीरिया इसराइल के खिलाफ साजिश रच रहा है और इसराइल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और इतिहास नियंत्रण से बाहर है। हमें षड्यंत्र के सिद्धांत पसंद हैं। आपको पता है क्या ली हार्वे ओसवाल्ड ने कैनेडी को गोली मारी थी? अच्छा नहीं, तुम मूर्ख हो, माफिया ने ऐसा किया। नहीं नहीं, यह एक वामपंथी हास्य षड्यंत्र था। हमें षड्यंत्र के सिद्धांत पसंद हैं। विचार यह है कि चीजों को पीछे के कमरों से नियंत्रित किया जाता है और भगवान कहते हैं, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि इतिहास अंततः मेरे नियंत्रण में है। घबराओ मत, मुझे यकीन है कि मैं खुद को सही ठहराने के लिए ऐसा करता हूं, लेकिन फिर भी मैं टीवी समाचार नहीं देखता। मेरी शांति इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने परदादाओं के बारे में सोचता हूं। उन्हें नहीं पता था कि भूकंप में 25,000 भारतीयों की मौत हो गई है। वे शांत जीवन जीने में सक्षम थे क्योंकि वे ऐसी चीजें नहीं जानते थे जिन्हें जानने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम अपने दांतों के किनारों पर रहते हैं। हे भगवान, वह देखो, अब जैसा कि मैं कहता हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको टीवी समाचार नहीं देखना चाहिए। मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूं और कुछ विकल्पों के बारे में बात कर रहा हूं जो हमें चुनना पड़ सकता है। जिसे वे साजिश कहते हैं उसे साजिश मत कहिए। अब श्लोक 13 को देखें। परंतु सेनाओं का यहोवा, अब मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। रोमानिया में मैं यशायाह को पढ़ा रहा था और हमने पहले 12 अध्यायों में लॉर्ड ऑफ होस्ट्स की घटनाओं के माध्यम से अपना काम किया। पहले 39 अध्यायों में लॉर्ड ऑफ होस्ट्स की लगभग 39 घटनाएं हैं। अब याद रखें, इसका मतलब स्वर्ग की सेनाओं का भगवान है। यह इतिहास पर ईश्वर के नियंत्रण के बारे में बोलने का एक तरीका है। परंतु सेनाओं के यहोवा को तुम पवित्र मानना, अब उसका मतलब क्या है? इसका मतलब भगवान को पवित्र बनाना नहीं है। इसका मतलब उसे वैसा बनाना है जैसा वह वास्तव में है, वह उत्कृष्ट व्यक्ति जो सब पर शासन करता है। जब हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वह छोटा भगवान है जो हमारी प्रार्थनाओं को सच करने के लिए हमारे बिस्तर के नीचे रहता है, तो हम उसे अपवित्र कर देते हैं। अगर मैं कोई अज्ञात शब्द बना सकूं, हम उसे अपवित्र करते हैं। हम उसे छोटा और महत्वहीन और महत्वहीन बना देते हैं। और यशायाह कह रहा है, परमेश्वर यशायाह से कह रहा है, मुझे महत्वपूर्ण बना, कुल मिलाकर मुझे ऊंचा बनाओ, मुझे शासक बनाओ। अगर तुम्हें किसी चीज से डरना है तो मुझसे डरो। इतिहास में साजिशों से मत डरो। मुझे अप्रसन्न करने से डरो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरी 2 बहनें हैं जो मुझसे 9 और 10 साल बड़ी हैं, और वे मेरी माँ और पिताजी से कहती रहती थीं, वे पहले ही घर से बाहर जा चुके हैं और शादीशुदा हैं और मैं अपनी किशोरावस्था में आ रही हूँ। उन्होंने कहा, आप उसे किसी भी चीज से बच निकलने दें। मैं हमेशा कहता था कि माँ उस समय तक थक चुकी थी, लेकिन यह उससे अधिक था। मैं दिल से जानता था कि मेरे माता पिता ने सही काम करने के लिए मुझ पर भरोसा किया। अब कुछ चीजें थीं जो मैंने की और मुझे खुशी है कि वे बिना जाने ही मर गईं। लेकिन मुझे उनका भरोसा टूटने का डर था। मुझे इस बात का डर नहीं था कि मेरे पिता मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे इस बात का डर नहीं था कि मेरी माँ मेरे साथ क्या करेगी। अब यह सच है कि मेरे पिताजी को केवल इतना ही कहना पड़ा, जॉनी, यही चर्चा का अंत था। लेकिन यहाँ तो यही हो रहा है। ऐसा नहीं है, ओह भगवान मेरे साथ आगे क्या करने जा रहा है। यह वह नहीं है। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे उसे ठेस पहुंचे। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे उसका दिल टूट जाए। मैं उन चीजों को करने से डरता हूं। वह यही कह रहा है। इसके भय और उसके भय से शासित न हो। उस पर और उसे खुश करने पर ध्यान दें। अपना जीवन जीने पर। और बाकी सभी चीजें इसकी जगह ले लेंगी। यह एक महान शब्द है। बढ़िया शब्द। फिर वह कहते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा, और कमेंटेटर को इसके साथ संघर्ष करते देखना बहुत दिलचस्प है। वह कहता है, मैं पवित्र स्थान और फंदा बनूंगा। और टिप्पणीकार ने कहा कि हमें वह श्लोक बदलना होगा। वह सही नहीं हो सकता। मेरा उत्तर है, क्यों नहीं? उसके मार्ग पर जाओ और वह एक अभयारण्य होगा। उसके चेहरे पर उड़ो और वह फंदा बन जाएगा। मुझे लगता है कि यह उतना ही सरल है। यह एक तरह से है, आप अपना पैसा चुकाएं और अपनी पसंद का लें। वह आपके लिए क्या बनने जा रहा है? तो यशाया कहता है, मुझे लगता है यह अध्याय 6 की पूर्ति है। गवाही बांधो, शिक्षण पर मुहर लगाओ। मैं यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो याकूब के घराने से अपना मुंह छिपाए हुए है। मुझे उससे आशा रहेगी। देखो, मैं और वे बालक जिन्हें यहोवा ने मुझे दिया है, सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर विराजमान है, इसराइल के लिए चिन्ह और दृष्टांत हैं। ठीक है, यह पीढ़ी वे नहीं सुनेंगे। गवाही बांधो, इसे मेरे शिष्यों को सौंप दो जो मेरे पीछे आते हैं। और एक दिन एक ऐसी पीढ़ी उभरेगी जो इसे सुन सकेगी और हाँ कह सकेगी। इसमें 150 साल लग सकते हैं। इससे पहले कि वे इसे सुने, उन्हें निर्वासन की आग लग सकती है। यह भगवान का काम है। करेन और मैंने हगरी में एक मिशनरी जोड़े के साथ कुछ समय बिताया। प्यारे प्यारे लोग, हंगरी ईंटों जितना कठोर है। आप जानते हैं, वे न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से में जले हुए क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। वहां बहुत सारे पुनरुद्धार हुए हैं। हंगरी का एक अविश्वसनीय ईसाई इतिहास है, और अब यह चट्टानों की तरह कठोर है। और वे स्वयं से पूछते हैं, हम अपना जीवन किस लिए दे रहे हैं? हमने कोई बड़ा चर्च नहीं बनाया है। यह भी निश्चित नहीं है कि हमने कोई चर्च बनाया है। और मुझे यकीन नहीं है कि मैं उन्हें बहुत प्रोत्साहित कर रहा था, लेकिन मेरा कहना था, तुम वफादार रहो। परिणाम प्रभु के हाथ में है। सवाल यह है कि आपको क्या करने के लिए बुलाया गया है, और क्या आप ऐसा कर रहे हैं? जहां तक हम जानते हैं, यिर्मयाह का केवल एक ही शिष्य था, बारूक, और वह बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वह वफादार था, और आज हमें उनकी किताब मिल गई है, और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए भगवान का वचन है। तुम वफादार रहो, वही करो जो तुम्हें करने के लिए कहा गया है। इसे अपनी पूरी ताकत से करो, इसे आत्मा की शक्ति से करो, क्योंकि इन अन्य लोगों के लिए यह अंधकार है। अंधेरा। अध्याय 8 के शेष श्लोक बहुत ही गंभीर हैं। जब वे तुमसे कहें, तो ओझाओं और तांत्रिकों से पूछो जो चहचहाते और गुनगुनाते हैं। क्या लोगों को अपने परमेश्वर से नहीं पूछना चाहिए? क्या उन्हें जीवितों की ओर से मृतकों से पूछताछ करनी चाहिए? शिक्षण और गवाही के लिए। यदि वे इस वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे तो इसका कारण यह है कि उनका कोई सवेरा नहीं हुआ है। वे बहुत दुखी और भूखे होकर देश में से होकर गुजरेंगे, और जब वे भूखे होंगे तो क्रोधित होंगे, और वे अपने राजा और अपने परमेश्वर के विरुद्ध तुच्छ बातें बोलेंगे। वे ऊपर देखेंगे और वे पृथ्वी की ओर देखेंगे, परंतु संकट और अंधकार और पीड़ा का अंधकार देखो। उन्हें घने अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। इसे उत्तराधुनिकतावाद कहा जाता है। अंधेरा। ब्राजील में आज उच्च वर्गों में प्रेतात्मवाद सबसे प्रमुख है। अंधेरा। और उन्होंने अंधकार का मार्ग चुना है, और परिणाम हमारे सामने हैं। यहां यही हो रहा है। तुम वफादार रहो। जिसे वे साजिश कहते हैं उसे साजिश मत कहिए। प्रभु को पवित्र बनाओ। उसी से तुम डरोगे, उससे तुम डरोगे, और तब वह एक अभयारण्य होगा। हम वहां रुकने जा रहे हैं। हमें अध्याय 9 के उन पहले 7 छंदों को देखने के लिए आज शाम यहां मिले समय से थोड़ा अधिक समय चाहिए। हम देखेंगे कि क्या हम अगली बार उन्हें सैंडविच बना सकते हैं। मुझे प्रार्थना करने दीजिए। हे भगवान, हमें सिखाओ कि तुम पर भरोसा करने का क्या मतलब है। जब हम इतने भयभीत हों कि हम आपके लिए कभी जोखिम नहीं लेंगे तो हमें क्षमा करें। कभी भी अपने आप को ऐसी स्थिति में न रखें जहां हमें वास्तव में आप पर निर्भर रहना पड़े। हमें माफ कर दो। आप जानते हैं कि भगवान हम सब कहां हैं। आप जानते हैं कि हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियां क्या हैं। लेकिन भगवान, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमें आप पर अधिक गहराई से भरोसा करना सीखने में मदद करेंगे, और भी पूरी तरह से जो कुछ भी हम सामना कर रहे हैं उसके लिए। तब प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वास्तव में हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप हमारे साथ रहने आए हैं। केवल स्वर्ग से प्रोविडेंस के बम फेंकना नहीं, लेकिन आप हमारे साथ रहने के लिए यहां आए हैं। धन्यवाद। और इसलिए हम कर सकते हैं, हम आपको अपने जीवन में पवित्र बना सकते हैं। हम तुम्हें सर्वोच्च स्थान दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अच्छे हैं और हमारे लिए आपके इरादे अच्छे हैं। तो प्रभु, ऐसा करने में हमारी सहायता करें, और हमारे चारों ओर बढ़ते अंधकार के बीच हमें प्रकाश बनने में मदद करें, क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं जो प्रकाश हैं, जो प्रकाश हैं, और हम तेरे पवित्र स्थान में निवास कर रहे हैं। आपके नाम पर तथास्तु। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 5 यशाया अध्याय 7 और 8 है। यशाया अध्याय 7 और 8।